नेटवर्क छह सुनने वाले सभी श्रोताओं को आवेश तिवारी का नमस्कार। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में। यह इलाका जिसे पंडित नेहरू ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, विकास की अंधी दौड़ में विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित और अभावग्रस्त क्षेत्रों में शामिल हो गया। आदिवासी बहुल इस जनपद में प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से जिस चीज पर सर्वाधिक असर पड़ा वो था जल। जल के अभाव में यहां के आदिवासी गिरिजनों को अकाल मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। इस बीच लगभग दो दशक पहले उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो उम्मीद थी डॉक्टर रमेश कुमार गुप्ता के रूप में, एक प्रख्यात चिकित्सक, एक पर्यावरणविद जिसने जलदान की अभिनव परंपरा शुरू कर जल संकट से त्राही त्राही कर रहे आदिवासियों के जीवन को बदल कर रख दिया। डॉक्टर गुप्ता द्वारा बनाई गई बंधियां आज यहां के आदिवासियों के लिए अमृत कलश है। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका नेटवर्क छह में स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्रों में बंधियां बनाने की योजना आपके मन में कैसे आई?
हम शुरू में एक आश्रम में जाते थे, ये मिर्चाधुरी स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर गुलालीडीह गांव का था।
जी जी जी।
वहां पर ये वनवासी सेवाश्रम की एक ब्रांच थी
जी,
और उसके जो संचालक थे बाबुल भाई
जी,
वो हमको अपने यहाँ मेडिकल एड के लिए ले गए थे। तो वहाँ बच्चों का महीने में एक बार जाकर के चेकअप वगैरह करते थे
जी जी।
धीरे धीरे जब उनके काम को हमने समझा, पहले तो हमारी समझ में ही नहीं आया क्योंकि उस माहौल के हम थे नहीं
जी,
लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि इस सबसे कहीं अच्छा है कि हम उस एरिया को पानी की एक आबाद सप्लाई मेंटेन कराएं, जो वो कर रहे थे बहुत अरसे से, बहुत छोटे स्केल पर
जी,
अपने हल्के संसाधनों से
जी, जी,
कर रहे। तो उसमें हमने थोड़ा थोड़ा हेल्प करना शुरू किया
जी।
वो क्या करते थे, वो सिर्फ वर्षा जल को रोकने का इंतजाम करते थे। थोड़ा थोड़ा भी रुक जाए, ज्यादा भी रुक जाए, जितना भी रुक जाए
जी,
वो रोकने का प्रयास करते थे। खेतों में रुक जाए, तालाब में रुक जाए
जी।
उनके साथ हमने करीब करीब 6-7 साल रहे, हम
जी, जी,
जाते रहे, हर महीने जाते थे
जी।
जो कुएं जब शुरू शुरू में हम जाते थे, जो कुएं में 150-150 फीट तक पानी था, बंधियों के बन जाने से उसमें 50-60 फीट तक पानी आने लगा। ये देख करके हमें लगा कि ये काम कम से कम इस आदिवासी इलाके के लिए, जहां नहरें नहीं बन सकती, जहां कुछ नहीं हो सकता, जहां आदिवासी लोग कुएं नहीं, ट्यूबवेल कुछ भी नहीं कर सकते, तो अगर पानी की सप्लाई इस तरह से, पानी के स्टोरेज हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में हमारी रुचि डेवलप हुई। यहाँ उसके बाद यहाँ पर एक अघोर सेवा सदन है डाला में
जी जी,
तो यहाँ पर भी हम अपने प्रोफेशन के उस पर मेडिकल एड के लिए
जी जी,
हर इतवार जाने लगे। तो वहाँ हमारी मुलाकात एक पत्रकार जी से हुई, नरेंद्र नीरव
जी जी।
तो पहले तो जैसे एक सामान्य मुलाकात होती है, हमने कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद लगा कि वो वास्तव में एक सिंसियर व्यक्ति हैं
जी जी।
तो जब उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने, उनको भी ये चीज बहुत पसंद आई
जी जी।
और धीरे धीरे फिर इस नोटोलिया के इलाके से हम लोगों ने बंदी का कार्यक्रम शुरू किया।
तो सब एक चीज बताएं, यहाँ पे सोनभद्र में खासतौर से सीमांत कृषक है, छोटी जोत के किसान है, आपको क्या लगता है कि ये बंदियां बनवाने से उनकी आर्थिक स्थिति में कितना परिवर्तन आया?
देखिए, बंदियां बनवाने से सबसे जो बड़ी चीज ये हुई कि कम से जो, जैसे ये इलाका बिल्कुल वर्षा जल पर निर्भर है, जब बारिश खत्म तो पानी खत्म
जी।
हमने देखा कि बहुत श्रम सिर्फ पानी लाने में इनका खर्च होता था
जी जी।
औरतें शुरू से घड़ा लेके जाती थी, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पानी पीने का लेके आती थी, जानवरों को कौन पिलाएगा जब आदमी के लिए नहीं पानी नहीं होगा
जी जी।
मतलब गांव में कुछ लोग अपने जानवरों को लेकर के 6-7 किलोमीटर ओबरा जलाशय, ऐसे जलाशयों में जाते थे, शाम को वहां से लौटते थे, दिन भर उनका उसी में व्यतीत होता था
जी।
बंधियां बन जाने से ये हुआ कि अगर छोटी भी बंधी, उसमें अगर 6 महीने भी पानी रहा तो उस 6 महीने उनका वो श्रम बच गया
जी।
वहां जो भी जो छोटे मोटे उन लोगों ने कुएं बना रखे थे, उनमें पानी आने लगा, उनमें पानी की सप्लाई हो गई। और जानवरों के लिए तो बिल्कुल अमृत तुल्य हो गया, जानवरों को इतनी राहत मिली। शाम को कभी कभी हम लोग मतलब मैं हर इतवार को जाते थे बनवाने के लिए, कभी कभी शाम को भी जाते थे, तो शाम को जो जानवरों की भीड़ लगती थी उन जलाशयों को देख के, उसको लगता उसको देख के लगता था कि वास्तव में मतलब कितना कितना फर्क आया है हमारे इस प्रयास का, कितना फर्क है वो देख करके ही पता चल सकता है।
जी डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, यहाँ पे अभी जो सरकारी बंदियां बनती हैं उनकी कीमत 25 लाख 30 लाख 35 लाख के आसपास होती है, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धि व्यवस्था करना कैसे संभव हो पाता है इन बंदियों के लिए, कैसे कर पाते हैं आप?
देखिए हमारी बंदियों में इतना खर्च तो नहीं आता
जी,
हमारी बंदियां कुछ हम लोगों के अंशदान से और कुछ ग्रामीणों के
जी
योगदान से श्रमदान से बनती है, और किसी भी बंदी पे हमारे 40 से 50 हजार खर्च से ज्यादा खर्च नहीं आया, खाली दो बंदियां ऐसी है जिनमें 1 लाख के करीब खर्च आया
जी जी।
और अगर 25-30 लाख मिले तो का इंतजाम हम लोगों को हो जाए तो हम शायद पूरा एक टोले को ये पूरे ग्राम सभा को पानी से वो कर दें
जी जी जी,
इतना अगर हमारे पास हो जाए तो। अब हम नहीं कह सकते कि हम इस बारे में कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते।
अच्छा डॉक्टर बताएं, आप लोग कोई सरकारी मदद नहीं लेते हमें पता लगा है बंदियों के लिए, क्या कोई खास वजह है इसकी, आप लोगों ने कभी प्रयास किया कि नहीं इसके लिए?
नहीं हमने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया
जी।
शायद उस सरकारी मदद लेने की जो प्रक्रिया है उससे हम थोड़ा घबराते थे
जी।
उस प्रक्रिया के अंदर घुसकर उससे सरकारी मदद ले पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं होता, अगर हम वो प्रक्रिया अपनाने लगते हो फिर हम इधर काम ही नहीं कर पाते। हमारे पास टाइम ही कितना था, हर इतवार को 2 घंटे का टाइम या 4 घंटे का टाइम, हम इस प्रक्रिया को अपनाते या अपना चुपचाप काम करते
जी जी। डॉक्टर साहब ये बताएं, आदिवासी इलाकों में खासतौर से सोनभद्र की ही बात नहीं है, आप पूरा छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश का इलाका देख लीजिए, आदिवासी इलाकों में जल संकट है, हर जगह एक समान है, आपको क्या लगता है कि इसकी स्थायी समाधान कैसे संभव हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए?
देखिए आवेश जी, जल कोई वैसी मतलब अभास इसका भंडार तो है नहीं, जो कुछ भी है बारिश से ही आता है, बारिश से ही वो रिप्लेनिश होता है
जी।
तो अगर हम जब तक इस बारिश के जल को रोक कर जमीन के अंदर रिपरकुलेट नहीं कराएंगे तो हम कहां से जल की समस्या का समाधान करेंगे
जी।
जो जो कोई भी पानी की जितनी भी सप्लाई अल्टीमेटली वर्षा जल पर ही है, चाहे वो पहाड़ की हो चाहे यहां की हो, अल्टीमेटली ये सब वर्षा जल पर ही है। तो जब तक वर्षा जल का हम वो नहीं करेंगे स्टोरेज प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, इसकी समस्या का समाधान संभव है ही नहीं। अब हम आपको एक बात बताते हैं
जी।
मैं जिस जिले का हूँ हरदोई जिले का, बहुत छोटा सा जिला है
जी।
हमारे मतलब जब हम लोग छोटे थे तो उस जिले का कहीं किसी फील्ड में नाम भी नहीं आता, ना कोई इंडस्ट्री थी
जी।
उस छोटे से जिले में जो कस्बा जिस रेलवेगंज में हम लोग रहते थे मोहल्ले में, मुश्किल से 1 किलोमीटर का उसका पूरा डायमीटर होगा, मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर का डायमीटर होगा उसका, उसमें कम से कम 7 या 8 बड़े बड़े तालाब थे।
अच्छा,
उससे उस पूरे जिले की सप्लाई पानी पीने की सबकी होती थी, आज वो सारे के सारे सूख गए। जो जल स्तर जो हमारे हम लोगों के घरों में कुएं थे जिनका जल स्तर मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 फीट था, हम लोग छोटे पर अपने खुद बाल्टी से पानी निकालते थे, खुद अपना यूटिलाइज करते थे, वो आज कहां का कहां पहुंच गया है। तो जब जो स्टोरेज जो तालाब थे स्टोरेज का ही तो काम करते थे, बारिश के पानी के स्टोरेज का ही तो काम करते थे, वो सारा स्टोरेज खत्म हो गया, जाएगा पानी कहां? रायबरेली वगैरह के लोग के जो हमारे यहाँ अस्पताल में काम करते हैं वो बताते हैं कि साहब अब तो वहां जिसने शुरू में पंप सुबह सुबह जिसने पंप ऑन कर दिया उसके घर तो उसके खेत में पानी आ गया, बाकी सारा चला गया। तो ये सब अल्टीमेटली होगा क्या
जी?
जब तक रिप्लेनिश हम नहीं करेंगे अंदर कोई अथाह जल के
सही बात,
कोई
सही बात।
समुद्र थोड़ी ना है।
बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर एक होता है, एक चिकित्सक के तौर पर आप जल संकट को ग्रामीणों के खासतौर से ग्रामीणों के स्वास्थ्य से कितना जुड़कर देखते हैं?
देखिए जितनी जल से बीमारियां पैदा होती हैं दूषित जल से, जल से मतलब जल संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो शुद्ध या साफ पेयजल न पाने के कारण होती हैं।
जी
हमने देखा है और आप घूमते रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि उनकी पानी की सप्लाई क्या है, पीने के पानी की सप्लाई क्या है। एक बगल में नाला बह रहा है, उसके बगल में गए, अगर बहुत बहुत ज्यादा हुआ तो अदरवाइज कहो उस नाले का ही पानी वो निकाल करके अपने घर में यूज करें, या बहुत तो उससे 2-10 मीटर दूर उन्होंने गड्ढा खोद दिया जिसको वो लोग चुहाड़ कहते हैं, उसमें जो पानी उस नाले का छन के आ गया वही पानी वो लोग पीते हैं। तो इससे हम बीमारी नहीं उम्मीद करें तो क्या उम्मीद करें, स्वास्थ्य उम्मीद करेंगे।
जी बिल्कुल। डॉक्टर भविष्य की क्या योजना है आपकी?
भविष्य की योजना, अब एक हमारे काम में एक कमी रह गई, हम स्वभाव से या कैसे भी हम लोगों को इससे जोड़ नहीं पाए,
जी
जिसको कहते हैं जन आंदोलन, जैसे
जी
राजस्थान में कुछ लोगों ने
जी जी
किया,
जी जी
उस तरह से हम इसको आंदोलन को रूप नहीं दे पाए। जो भी प्रयास था हमारा एकाकी प्रयास था, हमारे मतलब इवन जिन गांव वालों के यहाँ हमने बंदी बनाई वहां भी संवाद का काम हमारे मित्र नीरव जी ही करते थे,
जी जी
हम वो नहीं कर पाते,
जी
वो
जी
हमारे स्वभाव में नहीं रहा,
जी
वो
जी
हमारी कमी
जी
है।
जी जी
लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो अगर ये जन आंदोलन के रूप में हो
जी
और ये जितना बारिश का पानी यहाँ पर आता है सोनभद्र में, अगर इसका हम 10% भी
जी
स्टोरेज
बिल्कुल
कर लें तो
बिल्कुल
इस
बिल्कुल
पानी के ग्रामीण इलाकों की कम से
जी
कम,
बिल्कुल
और दूर के ओबरा एक टाउनशिप है जहां हम रह रहे
जी
हैं,
जी
यहीं पर जब हम शुरू शुरू में आए थे इतने तालाब थे, सब के सब या तो फाट दिए गए या
जी
सूख
बिल्कुल
गए या बहा दिए गए,
बिल्कुल बिल्कुल
उनकी जमीन पर मकान बन गए,
जी
तो हम ही लोग झेल रहे हैं इस पानी के संकट को।
जी बिल्कुल
तो हमारी योजना तो है थोड़े इस प्रयास को जारी रखा जाए और ज्यादा लोग जुड़ सके तो बहुत ही अच्छा रहे, इसमें कहीं से जन सहभागिता होनी चाहिए।
बिल्कुल। आपने नेटवर्क सिक्स से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस हफ्ते हमारे साथ थे डॉक्टर रमेश कुमार गुप्ता सोनभद्र से। अगले हफ्ते फिर कोई शख्सियत हमारे साथ होगी। आप सभी का हफ्ते की मुलाकात में आने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आवेश तिवारी को इजाजत दें। नमस्कार।
ये दिखता